जैसे कि इंग्लिश का थर्ड कंट्रोल है। हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी माधव गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी वल्लभ गिरिवर गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना ब्रज जनरंजन यशोदानंदना ब्रज जनरंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी पाद परम हम सभी वैशिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रीमान गृह सभा चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रीमान गृह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। पिताई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय दूसरा, इसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण, श्लोक क्रमांक 6। शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्या होद्धव उत्स्मयन् शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्या होद्धव उत्स्मयन् शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्या होद्धव उत्स्मयन् शनकैर्भगवल्लोकान् लोकं पुनरागतः और कोई शनकैर्भगवल्लोकान् लोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्या होद्धव उत्स्मयन् शनकैर्भगवल्लोकान् लोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं इत्याहोधव उत्मयन् माताएं शनकै भगवल्लोकान् त्रिलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम् इत्याहोधव उत्मयन् शनकैः धीरे धीरे भगवत भगवान लोकात धाम से नृलोकम मनुष्य लोक को पुनः आगतः फिर से आकर विमृज्य पहुंचकर नेत्रे आँखें विदुरम विदुर से प्रीत्या स्नेह पूर्वक आह कहा उद्धवः उद्धव ने उत्स्मयन उन स्मृतियों के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पहुंचते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। क्या बोले वो अगले श्लोक में कल देखेंगे। तात्पर्य जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तो वे बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहां तक कि वर्तमान शरीर में भी जो कि इस जगत से संबंधित है। शुद्ध भक्त पूरी तरह शारीरिक स्तर पर नहीं रहता क्योंकि वह ब्रह्म के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। चूंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे अतः उद्धव भगवत धाम द्वारका से नीचे उतरकर मनुष्यों के भौतिक स्तर पर आ गए। यद्यपि शुद्ध भक्त इस मर्त्य जगत में उपस्थित रहता है किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे होने के कारण ही वह यहां पर रहता है, किसी अन्य भौतिक कारण से नहीं। जीव अपने अस्तित्व की स्थिति के अनुसार या तो भौतिक स्तर पर रह सकता है या भगवान के दिव्य धाम में। जीव में होने वाले परिस्थितिक तक परिवर्तनों की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य द्वारा श्री रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में चैतन्य चरितामृत में की गई है। अभी प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत से कोट करते हैं। समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकर रस प्राप्ति के द्वारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यही आस्वाद भक्ति का बीज है और जो इस बीज को प्राप्त करने का परम भाग्यशाली होता है उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने हृदय के भीतर इस बीज को बो दे। जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगने के लिए पानी देकर सींचना पड़ता है उसी तरह भक्त के हृदय में बोए हुए भक्ति का बीज भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचकर बड़ा किया जा सकता है। इस तरह से पोषित भक्ति का लता क्रमशः भरती जाती है और भक्त माली के रूप में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता रहता है। यह भक्ति लता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वह वैकुंठ लोक में पहुंचती है, जहां से आगे बढ़ते हुए वह गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्ति रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती है और इस तरह स्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है और तब जिस माली ने इसका पोषण किया था वह प्रेम रूपी फल का आस्वाद कर सकता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी, यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। वे परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय भगवान कृष्ण का स्मरण इसके छठे श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा कुछ इस प्रकार से चल रही है कि पिछले अध्याय में विदुर जी उद्धव जी के समक्ष कई सारे प्रश्न रखते हैं, पूछते हैं। और इस अध्याय में शुरुआत इस प्रकार से होती है कि उद्धव, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो जब उन्होंने भगवत संबंधी प्रश्नों को सुना जिसमें भगवान के बारे में चर्चा करने का उनको भी मौका मिलने वाला है, इसका स्मरण करते ही वे भगवत चेतना में मग्न हो गए, भगवान के स्मरण में मग्न हो गए। और उनका बाह्य जगत से मानो संपर्क छूट ही गया। तो भागवत में बतलाया है कि वे ध्यान में और गुड़ जाते गए। ये होश नहीं था कि विदुर जी सामने खड़े हैं और उन्होंने भी कुछ प्रश्न पूछे हैं, सब भूलकर केवल भगवत चिंतन में मग्न हो गए। और आज के श्लोक में बतलाया गया है कि कुछ समय बाद जब उद्धव जी को लगा कि अरे विदुर जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर देना चाहिए, तो जैसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उद्धव भगवत धाम से उतरकर भगवत लोकान से नृलोकान, भगवत धाम भगवत लोक से कृष्ण लोक से वे नृलोक भौतिक जगत में आए। तो स्मरण करने मात्र से भगवत धाम का, भगवान का, उद्धव जी भगवान के साथ थे, भगवान के धाम में थे। अंग्रेजी में कहावत आती है यू आर वेयर योर माइंड इज, आप वहां हैं जहां आपका मन है। जहां शरीर है हम वहां नहीं हैं, लेकिन जहां हमारा मन है एक्चुअली हम वहां पे होते हैं। जैसा अभी हम बैठे, शरीर तो इस कक्षा में है, लेकिन अभी मन कहां है इस समय? अलग अलग हम में से हर अलग अलग भक्तों का मन अभी हो सकता है अलग अलग जगह पर हो, डिपेंड करता है यहां आने से पहले क्या चल रहा था हमारे मन में। समझिए आपने किसी को कुछ टाइम दिया है मिलने के लिए, और अगर क्लास 9 बजे से ऊपर चली जाती है और आपने 9 बजे का टाइम दिया है, उसके बाद आपका मन तुरंत चले जाएगा वहां पर जिससे आपको मिलना था। तो भले ही शरीर इस क्लास में बैठा होगा लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा उसके बाद। सुनता जब है जब मन वहां पर है। या अगर किसी को बहुत सुंदर प्रसाद की खुशबू आती है आज, तो और फिर मन जाता है कि क्या बना होगा प्रसाद में आज, तो फिर हम प्रवचन स्थल पे नहीं है, फिर हमारा मन किचन में पहुंच गया। अभी हम किचन में पहुंच गए फिर, या प्रसाद हॉल में पहुंच गए, तो हम वहां हैं जहां हमारा मन है। इसलिए शास्त्र में मन को संयम करने पे बहुत जोर दिया जाता है। श्री प्रहलादानंद स्वामी महाराज इस्कॉन के एक गुरु हैं, जो कई अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर देते हैं। वो बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अ माइंड कंट्रोल मूवमेंट। कृष्ण भावना में संघ जो है ये मन को संयम करने का एक संस्था है। कि मन बहुत चंचल है, मन भागता रहता है, सबसे बड़ा प्रमाण है जप के समय। हम एक्चुअली हम दौड़ते दौड़ते जप कर रहे हैं क्योंकि मन दौड़ रहा है, जगह जगह मन घूमता रहता है। कल किसने हमको कुछ बोला, उसने ऐसा क्यों बोला हमको, अभी मिलने दो आज उसको, हम उसको जवाब देंगे। तो मन तो हम हालांकि शरीर तो हाथ में बीट बैग पकड़े बैठा है, लेकिन मन क्योंकि अलग अलग बातों का चिंतन कर रहा है तो हम जप को सुन नहीं रहे। फिर हम उस व्यक्ति के साथ हैं जिसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। तो मन जहां रहता है वहां होने का हमें लाभ या नुकसान प्राप्त होता है। तो उद्धव जी हालांकि वो भूमि पर थे, धरती पर थे शारीरिक रूप से, लेकिन क्योंकि भगवान का नाम सुनते ही उनका मन भगवान में लीन हो गया, भगवान के चिंतन में मग्न हो गया, तो ऐसा कि वो भगवान धाम थे, भगवान धाम में ही थे, ऐसा असलियत में वो भगवान धाम में थे उस समय, हालांकि शरीर उनका इस
धरातल पे था। तो ये स्मरण की शक्ति है। स्मरण करने मात्र से हम उस स्थान पे पहुंच जाते हैं या उस स्थान का हमें लाभ मिलता है। जैसे शास्त्र बोलते हैं कि जब हम वृंदावन के बारे में स्मरण करते हैं, जैसे अभी प्रभुपाद जी ने ये एक प्रथा बनाई कि श्रीमद् भागवत क्लास के शुरुआत में जय राधा माधव गाया जाएगा, इस चार लाइनों में पूरा वृंदावन धाम एकत्रित है। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरीवर धारी, यशोदानंद, यशोदा का नाम आ जाता है, ब्रज जन रंजन, ब्रज का नाम आता है, ब्रज में यमुना है, यमुना तीर वनचारी, यमुना का, गोवर्धन का, गिरिधारी। तो जब हम इस गीत को गाते हैं स्मरण करते हुए गोवर्धन का या यमुना का या नंद महाराज का, यशोदा माई का, तो हमको उनका सानिध्य, उनका संग प्राप्त होता है। माने अगर यशोदा माई यहां आ जाएं और हम उनको दर्शन करने का, उनसे मिलने का संग मौका प्राप्त होए, तो वही लाभ हमको मिल सकता है केवल स्मरण मात्र से। इसलिए स्मरण ये बहुत शक्तिशाली वस्तु है। श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, एनः पूर्वकृतं यत्तद् राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्ते अंत तद आत्मानः कीटपेशस्कृत यथा। प्रहलाद महाराज कई राजाओं का नाम गिनाते हैं, राजानः कृष्णवैरिणः, उन राजाओं का नाम गिनाते हैं जो कि भगवान कृष्ण के वैरी हैं, दुश्मन हैं, शिशुपाल, दंतवक्र और कई सारे और राजा जो कि भगवान के वैरी थे। लेकिन उस शत्रुता के कारण वे नित्य भगवान का स्मरण कर रहे थे। जहुस्ते अंत तद आत्मानः, प्रहलाद महाराज बोलते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, हालांकि वैरी भावना से, शत्रुता की भावना से, लेकिन भगवान का स्मरण करने से उनको भगवान का धाम और भगवान का ही स्वरूप प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं जो विष्णु दूत होते हैं वो लोग होते हैं जो हमेशा भगवान का स्मरण करते करते भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार शिशुपाल और दंतवक्र जैसे लोगों ने भी, जो कि हालांकि वैरी भावना से चिंतन कर रहे थे, लेकिन भगवान जैसा रूप प्राप्त किया उन्होंने। उदाहरण देते हैं, कीट पेशस्कृत यथा, जिस प्रकार से एक कीड़ा, उसको एक मधुमक्खी आके जब पकड़ लेती है खाने के लिए, तो वो कीड़ा शत्रुता की भावना से उस मधुमक्खी पर चिंतन करता है, स्मरण करता है कि इसने मेरे को पकड़ा है, और बहुत गंभीरता से वो उस मधुमक्खी पर चिंतन करता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगले जन्म में वो मधुमक्खी बन जाता है। ये चिंतन की शक्ति है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं, ये देखो चिंतन का दिव्य, चिंतन की द मिस्टिक पावर ऑफ मेडिटेशन, प्रभुपाद जी बोलते हैं चिंतन करने का ये एक ये व्हाट यू कॉल मिस्टिक पावर, एक चमत्कारी शक्ति, चिंतन की चमत्कारी शक्ति प्रभुपाद जी बोलते हैं। भौतिक जगत में भी देखते हैं हम लोग, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने कुत्ते या बिल्लियों से बड़े आसक्त होते हैं, हमेशा कुत्ते को साथ में लेकर घूमने जाते हैं, कुत्ते को साथ में लेकर सोते हैं, कुत्ते के साथ बैठकर खाते हैं, तो कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, सालों बाद उनका चेहरा कुत्ते जैसा दिखने लग जाता है। हकीकत है, ये मजाक के लिए नहीं बोल रहे हम। उनका चेहरा, उनका शरीर वैसा परिवर्तित होता रहता है। तो देखिए चिंतन हालांकि मानसिक स्तर पर हो रहा है, लेकिन उसका असर शारीरिक स्तर पर भी पड़ता है। मनु संहिता पर एक स्थान पर ऐसा बतलाया गया है कि जब व्यक्ति कुछ चीजों के बारे में, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत चिंतन करे तो वो चीजें हो जाती है उसके साथ। वो बोलते हैं, एक उदाहरण देते हैं, बीमारी। बीमारी के बारे में व्यक्ति बहुत सोचता, अरे मैं तो बीमार हो जाऊंगा, ये करूंगा तो बीमार हो जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो बीमार हो जाऊंगा, वो बहुत सोचता है, चिंतन करते बीमारी बीमारी, बीमार हो जाता है वो, चिंतन से बीमार हो जाता है वो, ऐसा ऐसा शास्त्र बतलाते हैं। जो चिंतन जो है बड़ी शक्तिशाली वस्तु है, और शास्त्र अन्य स्थान पर यम यम वापी स्मरण भावम, स्मरण मरते समय जो व्यक्ति जिस चीज का स्मरण करता है अगला शरीर उसको उस हिसाब से मिलता है। अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो भगवान का स्मरण करता है, देखिए दर्शन करने और स्मरण करने में अंतर है। ऐसा हो सकता है हम भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी के सामने जाकर भगवान का दर्शन करें लेकिन मन में कुछ और बातें चल रही हैं, किसी से कुछ लड़ाई हुई थी या किसी कुछ बहुत भूख लग रही है, खाने जाना है, भोजन करने जाना है, जल्दी से दर्शन लेना क्योंकि दर्शन बंद हो जाएगा फिर, तो समय मन हमारा भोजन में है अगर, तो भगवान के सामने होते हुए भी नहीं है भगवान के सामने। तो इसलिए मन को संयम करना या मन को भगवान में लगाना या भगवान भगवत भक्ति में जो हम अनेक अनेक सेवाएं करते हैं उन पर ध्यान लगाना, ये बात ध्यान रखते हुए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये बड़े आवश्यक है। वो स्मरण से, वो चिंतन से हम उसको उस कार्य का हमें लाभ प्राप्त होता है। यहां तक कि अर्च वगैरह की आराधना में जो लोग डीटी वर्षिप अर्च वगैरह की आराधना करते हैं तो उस पुस्तक में अर्च वगैरह की जो पुस्तक है उसमें बताया गया है कि साक्षात अर्च वगैरह की आराधना से ज्यादा शक्तिशाली है मानस पूजा। हर पुजारी लोग जब सुबह भगवान को नया वस्त्र पहनाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उससे पहले हर ब्राह्मण को मानस पूजा करनी होती है, और मन में वो सब कुछ वो करता है जो कि उसको बाद में मानस पूजा के बाद असलियत में करना है, बाह्य रूप से करना है। तो अगर मानस पूजा शास्त्र बोलते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाह्य पूजा के मुकाबले। इसलिए अलग अलग प्रकार के सात प्रकार के विग्रहों के बारे में बताया गया कि विग्रह सात प्रकार के चीजों से बनाए जाते हैं, जैसे धरती है या मट्टी है या मार्बल है, लकड़ी है, पेंट है, तो उसी प्रकार से एक सात में से एक है मन। मानसिक रूप से भी भगवान की सेवा की जा सकती है, मन में चिंतन करने से, जैसा हमने सुना है चैतन्य चरितामृत में, जो भगवान एक क्या नाम था उसका, कौन सा ब्रह्मचारी, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी, वे अपने चिंतन में भगवान को स्वीट राइस खिला रहे थे, मन में बना रहे थे स्वीट राइस, खीर बना रहे थे, अलग अलग अच्छे अच्छे व्यंजन उसमें डाल रहे थे, दूध उसमें, चीनी, किशमिश, काजू, खूब अच्छे अच्छे, मन में तो बहुत कुछ डाला जा सकता है, सब मन में डालकर भगवान को खिला रहे थे। और भोग लगाने से पहले उनको लगा कि अरे शायद ये ज्यादा गर्म तो नहीं होगी, भगवान को खाने में तकलीफ तो नहीं होगी, जरा उंगली डालकर देखता हूं, सब मन में चल रहा था। और जैसे ही मन में ही उन्होंने उंगली डाली इस खीर में, बहुत गर्म थी वो, तुरंत उन्होंने हाथ बाहर निकाला क्योंकि बहुत गर्म थी वो खीर। और जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि वाकई में उनके हाथ में उनकी उंगली जल गई थी थोड़ी सी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि फिर तो विग्रहों को रखने की आवश्यकता नहीं, घर पे भोग चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं, मन में ही सेवा करते रहें। पहली बात तो फिर हम खाएंगे क्या, अगर मन में तो नहीं खा सकते हम। हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो मन में खा भी लेते हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि भगवान के भक्त हमेशा भगवान धाम में रहते हैं, भगवान चिंतन में रहते हैं, तो भगवान धाम की लीलाओं का वो आस्वादन करते हैं, भगवान के धाम में जो खाने पीने को मिलता है वो उसका आस्वादन भी करते हैं। जैसे एक लीला में आता है रघुनाथ दास गोस्वामी के, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे गोस्वामी जो थे वो केवल थोड़ा सा छाछ, कुछ बूंदे छाछ पीकर रहते थे, लेकिन एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़े बीमार पड़ गए और वहां के वैद्य को जब बुलाया गया पूछने के लिए कि देखें क्या बीमारी है रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो वैद्य ने बोला कि इनका पेट खराब हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा खीर खा ली है। तो सब गांव के लोग बोले ये वैद्य पागल हो गया है, ये तो गोस्वामी ऐसे हैं जो दिन में कुछ बूंदे छाछ के पीते हैं और ये बोल रहे हैं इसने स्वीट राइस खीर बहुत ज्यादा खा ली इसलिए पेट खराब हो गया, ऐसा कैसे संभव है। बाद में जब रघुनाथ दास गोस्वामी से जब पूछा गया तो बोले ये बात सही है कि भगवान की एक लीला में मैं भाग ले रहा था भगवान धाम में, वहां पर लीला के बाद खूब सारा प्रसाद का वितरण हुआ तो वहां मैंने खीर बहुत ज्यादा खा ली थी। तो मानसिक रूप से भी व्यक्ति भोजन ग्रहण कर सकता है, भगवान के धाम में रह सकता है, भगवान की लीलाओं में भाग ले सकता है, लेकिन उसके लिए उस स्तर पर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन शास्त्र क्या बतला रहे हैं कि मन चिंतन का देखिए कितनी शक्ति है, चिंतन मात्र से, चिंतन पर निर्भर करता है कि हम कहां पर हैं और कितनी प्रगति कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में। नहीं तो कई साल 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 बीत जाएंगे, हम भक्ति के सारे अंगों को पालन कर रहे हैं लेकिन प्रगति नहीं होती, क्योंकि मन उन सेवाओं में नहीं लगता, मन हरि नाम में नहीं लगता, मन श्रवण के टाइम नहीं लगता। तो परेशानी है कि मन भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में नहीं लगता। कुछ समय समय पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा मन कितना भगवत भावना में लीन हो चुका है। वो समझ में आता है जब कोई विकट परिस्थिति आती है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो भगवान में चिंतन करना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब बहुत कठिनाई आती है। एक बार भाई हमको बतला रहे थे कि वो रात को प्रचार के कार्यक्रम से लौटे मंदिर में, और मंदिर में अपने कमरे की ओर जा रहे थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चूहा आया, भागा सामने से। इतना बड़ा चूहा था, बिल्ली जैसा दिख रहा था वो चूहा, और वो इतना मोटा भी था कि तेजी से नहीं भाग पा रहा था, धीरे धीरे भाग रहा था, लेकिन भाग रहा था। और सामने से गुजरा और जैसे ही भक्त ने देखा, अरे बाप रे, बोला ओहो, अरे कृष्ण का स्मरण आना चाहिए था, लेकिन उस चूहे को देखकर बाप रे ऐसा मन में आया, अब ये ऐसा मैंने बोल दिया, कृष्ण का चिंतन नहीं आया। तो अगले दिन से सोचने लगे, देखो मेरा कृष्ण में कितना कम ध्यान लगता है। इस समझ में आया कब, जब कोई क्राइसिस एकदम से अचानक कोई विकट परिस्थिति आई उस समय मन में क्या चिंतन आता है। नहीं तो बाकी समय में जब सब ठीक से चल रहा है तो हम प्रयास के द्वारा थोड़ा मन भगवान में लगा लेते हैं कभी कभी, लेकिन जब वो कठिन परिस्थिति आती है तो जो मन में चिंतन चल रहा है, जिस प्रकार की बातों का मन में चिंतन चल रहा है, वही बातें बाहर आती हैं। इसीलिए मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण कर पाना हमारे प्रयास के बाहर है। ऐसा नहीं कि हम प्रयास करके भगवान का चिंतन कर पाएंगे, उस समय इतनी विकट परिस्थिति होगी। शास्त्र बोलते हैं जैसा 42,000 बिच्छू मानो आपको एक साथ काट रहे हो, इतना दर्द होता है उस समय। तो अगर हमने सारा जीवन कृष्ण भक्ति करके भगवान के प्रति आसक्ति पैदा नहीं करी है तो भगवान का चिंतन उस समय नहीं हो पाएगा। भगवान का चिंतन नहीं होगा तो जिस भी चीज का चिंतन होगा उसके अनुसार हमको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो ये बड़े चिंता की बात है कि हमने कितना भगवत चेतना प्राप्त कर ली है इस जीवन में, क्योंकि मृत्यु के समय समझ में आएगा कि हमने कितना हम कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं। तो हमको हमारा जो भक्ति में जीवन जो बिता रहे हैं, इसका उद्देश्य है अंत्य नारायण स्मृति, कि अंत काल में हम भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का स्मरण कर सके। तो इसके लिए हमारा ये भक्तिमय प्रयास है। तो यहां पर जैसा बतलाया जा रहा है, उद्धव जी इतना भगवान के चिंतन में मग्न हो गए कि वो मानो इस लोक में है ही नहीं, भगवान के धाम में थे वो। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में और विस्तार से बतलाते हैं कि वो द्वारका से लौटे। सुखदेव गोस्वामी तो बोलते हैं भगवान धाम से लौटे, प्रभुपाद जी इसमें और ऐड करते हैं कि भगवान धाम कहां से, भगवान धाम से लौटे, वो द्वारका में थे, वहां पर भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान की लीलाओं में भाग ले रहे थे। और फिर जब उनको समझ में आया कि मेरे को विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देना है तो वे द्वारका से वापस नीलोकम, इस लोक में नीचे उतरे। अभी इतनी चर्चा करके अगर हम समाप्त कर दें कि भगवान में मन को लगाना है, भगवान में भगवान का चिंतन करना है, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, कोई पूछ सकता है लेकिन अभी तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये तो बड़े ही एक ऊंचा स्तर दिखलाई पड़ रहा है। अभी तो हमारा मन चारों दिशाओं में भागता रहता है, हर क्षण भागता रहता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। अर्जुन भी बात बोलते हैं, कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। वायु की गति को मैं रोक सकता हूं अपनी शक्ति से, लेकिन मन की चंचलता को मैं नहीं रोक पा रहा हूं। तो क्या प्रक्रिया है, कैसे इस मन को भगवान में लगाया जाए? तो प्रभुपाद जी ने करीब 70-75% अपना तात्पर्य इस बात पर जोर दिया है कि कैसे मन को भगवान में लगाया जाए, कैसे मन में भगवान का चिंतन किया जाए, जैसा कि अभी उद्धव जी कर रहे हैं, इस स्तर पे कैसे पहुंचा जाए। तो इस चीज को श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में श्री चैतन्य चरितामृत में, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी, उसमें से कोट करके बतलाते हैं। तो हम थोड़ी देर उस पर चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए अभी प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट है। ये तो हमने सुना कि कितना इम्पॉर्टेंट है मन को भगवान में लगाना, मन में भगवान का चिंतन करना। जब हम अलग अलग कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, सेवाएं करते हैं, तो उसमें उस समय हमारा चिंतन भगवान में होना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो, ये श्री चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है। और प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं इसको बतलाना, कैसे करना चाहिए, पूरी भक्ति की प्रक्रिया को वो समझाते हैं कि भक्ति कैसे शुरुआत होती है, भक्ति में क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस स्तर पर पहुंच पाए कि मन भगवान में लग सके, और क्या चीजों से बचना चाहिए जिसको अगर किया जाएगा तो मन भगवान में नहीं लग पाएगा। इसको बड़े सुंदर रूप से कुछ ही 4-5-6 श्लोकों में श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बतलाते हैं, और प्रभुपाद जी उसको उसके अनुवाद को पूरे तात्पर्य में कोट करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यहां से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कोट करना चालू करते हैं कि हर जीव इस भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। लोगों को विश्व सैर करने की बड़ी इच्छा रहती है कि हम जगह जगह जाकर देखें विश्व में क्या है। अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, अलग अलग जगह जाने की इच्छा होती है। अरे हमने पहले ही पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया है, अभी हम क्यों इच्छा रखते हैं फिर भी अनेक अनेक स्थानों में जाने की। ब्रह्मांड भ्रमिते, अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांडों में और ब्रह्मांडों के अलग अलग लोकों में हम और अलग अलग शरीरों में ऑलरेडी भ्रमण कर चुके हैं, और हर शरीर में क्या मिला है हमें, केवल दुख, केवल तकलीफें। इस पे थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जब हम लोग शास्त्रों को सुनते हैं, अभी ये श्लोक या इसके बारे में हमने कई सालों से, कई महीनों से सुनते आए होंगे, कैसे व्यक्ति बहुत ब्रह्मांड में घूमते घूमते भाग्यवान बनता है, किसको गुरु कृष्ण का प्रसाद कृपा मिलती है। लेकिन थोड़ा सोचिए, हम अलग अलग योनियों में कई जन्मों से भ्रमण करते आए हैं। उसके लिए चाहिए तो आप कुछ समय निकालकर किसी भी एक प्राणी का जीवन को जरा परखिए। जैसा सड़क पे कुत्ता बैठा है, कुछ 4-5-6 घंटे बैठ के देखिए कैसा जीवन जी रहा है वो। सोने के लिए उसको कोई अच्छा कमरा नहीं मिलता है, और कोई अगर वो रोड पे बैठा सो रहा है, सामने से गाड़ी आती है तो गाड़ी उसके लिए रुकेगी नहीं, उस कुत्ते को भागना पड़ेगा, नहीं भागा मर जाएगा। भोजन के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है उसको, और उसके बाद भी कई लोगों से लात खाने को मिलती है, कई लोगों को डंडा पड़ता है, कभी लोग पत्थर मारते हैं, तकलीफ ही तकलीफ। तो ये ऐसा एक योनि नहीं, हम हजारों हजारों योनियों से भ्रमण करते आए हैं, हर योनि में तकलीफ ही तकलीफ, अलग अलग प्रकार से तकलीफ मिलती आई हमको। ब्रह्मांड भ्रमित, ये बड़ा शब्द है कि ब्रह्मांड भ्रमित, हम सोचते भी नहीं इसके बारे में, पूरे ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद इतना भ्रमण करने के बाद इतनी तकलीफों को प्राप्त करने के, इस पे जब हम चिंतन करेंगे ना, तो हम भक्ति को गंभीरता से ले पाएंगे, जो हमें मिला है उसकी कीमत समझ पाएंगे। जब हम समझेंगे कि क्या कैसा जीवन था हमारा, जब हमें भक्ति की कृपा को, भक्ति की जो कृपा हमको अभी मिली है, जो वो नहीं मिली थी, कैसा जीवन था हमारा, कैसे योनि में हम भ्रमण कर रहे थे। जो शरीर योनि में भी है उनका जीवन भी अगर आप देखें, एक दिन का भी जीवन देखें बस, कितनी चिंताओं के द्वारा गुजरता है। कोई भी शहर में चले जाएं, कोई भी देश में चले जाएं, एक दिन व्यक्ति का जीवन देखें आप, अनेक अनेक चिंताग्रस्त, मन में अनेक अनेक चिंताएं रहती है। बड़े बड़े अमीर लोग भी, हालांकि खाने पीने के लिए सब सुविधाएं हैं, घूमने के लिए सब सुविधाएं हैं, लेकिन अनेक अनेक बीमारियां हैं शरीर में। क्यों? चिंता के कारण। तो इस प्रकार से हम अलग अलग योनि में भ्रमण करके कौन भाग्यवान जीव, अभी हम वो भाग्यवान जीव बने हैं जिनको गुरु कृष्ण प्रसाद दे पाए, गुरु और कृष्ण की कृपा गुरु के माध्यम से हमको मिली है। और क्या वो कृपा है? भक्ति लता बीज, ये भक्ति लता बीज हमको मिला है। प्रभुपाद जी अपने इन दो तीन श्लोकों के तात्पर्य में बड़े विस्तार से समझाते हैं भक्ति लता बीज क्या है और ये किस प्रकार से प्राप्त होता है। केवल एक गुरु मिल गए या गुरु से दीक्षा ले ली, उसी से नहीं मिलता। प्रभुपाद जी एकदम स्पेसिफिकली क्लियरली स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि भक्ति लता बीज क्या है और ये भक्ति लता बीज कैसे प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी बतलाते हैं तात्पर्य में कि दो प्रकार के बीज होते हैं, एक भक्ति लता और एक अन्य अभिलाषा। तो अन्य अभिलाषा का बीज हमारे शरीर में, प्रभुपाद जी बोलते हैं कई सारी वैरायटीज है हमारे पास, कर्म बीज, ज्ञान बीज, इंद्र तृप्ति का बीज, प्रभुपाद जी बोलते हैं पॉलिटिकल बीज, सोशल बीज, अलग अलग नाम लेते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में। कई सारे बीज है हमारी कई सारी इच्छाओं के रूप में। बीज मतलब स्रोत, कार्य करने का स्रोत, विचार हमारे मन में है। तो अलग अलग बीजों को हम सींच रहे हैं और कई कई योनियों में घूमते आए हैं कई कई बीजों को सींचते हुए। अब इतने लाखों करोड़ों सालों बाद, लाखों करोड़ों जन्मों बाद, अभी हम वो भाग्यवान जीव बने हैं कि हम एक गुरु के संपर्क में आए जिसके द्वारा हमें कृष्ण की कृपा मिली और ये भक्ति लता बीज मिला। प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति लता बीज मतलब गुरु के बतलाए हुए नियम, भक्ति की प्रक्रिया, ये वो बीज है। और अभी गुरु के पास बीज तो है, अभी उस बीज को प्राप्त कैसे किया जाए, अंतर है दोनों चीजों में। गुरु के हाथ में बीज है लेकिन वो बीज हमारे पास कैसे आएगा? प्रभुपाद जी बतलाते हैं जब एक जीव गुरु की वाणी, गुरु पे विश्वास करता है, उनकी शरण लेता है और उनके बतलाए हुए नियमों को पालन करने की इच्छा रखता है, ये तीन चीजें प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसके माध्यम से वो बीज हम तक आता है। जब वो गुरु पर विश्वास रखता है और उनकी शरण ग्रहण करता है और उनके बतलाए हुए नियमों को, उनके आदेशों को, जो प्रक्रियाएं वो बतलाते हैं उसको पालन करने के लिए इच्छा रखता है और प्रयत्न करता है, तब उसके पास वो बीज हाथ में आता है। तो ये बीज हमको बहुत जन्मों में के भ्रमण के बाद हम भाग्यवान बने हैं कि हमको मिला है। तो इसको साधारण नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं जिसके बारे में उद्धव जी अपने उदाहरण से दिखला रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहां से शुरुआत होती है इसकी, कि जो भक्ति लता बीज हम लोग वो भाग्यवान जीव अभी बन चुके हैं जिनको गुरुजनों का सानिध्य मिला है, उनका संग मिला है, अभी हम पर निर्भर करता है हम उस बीज को जो हमें मिल रहा है कितना ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं विश्वास के साथ, शरणागति के साथ और उनके बतलाए हुए नियम कानूनों को पालन करने की इच्छा रखकर और उसको प्रयास करके, उसको इच्छाओं को, उनके बताए हुए नियमों को पालन करने का प्रयास करके जब ऐसा करते हैं तो वो बीज हमारे पास आता है। और फिर आगे बताते हैं रूप गोस्वामी, मालिह न करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। फिर जब बीज वो हाथ में आता है तो उसको माली की तुलना करते हैं वो जीव से, जो भक्त है जिसको भी वो बीज मिला, बीज मिलने के बाद पहला स्टेप क्या करना है? बीज आरोपण, उस बीज को प्राप्त करने के बाद हृदय में बोए। नहीं, केवल बीज प्राप्त होने से बीज नहीं उगता, उसको बोना पड़ता है। कहां बोना है? हृदय में। इसकी तुलना की जाती है कि जो हमें, जो हम हमें जो नियम कानून बताए गए भक्ति में, ये जो आदेश दिए गए, उनको जीवन में उतारना। बीज को रखने मात्र से उसमें से फल नहीं निकलेगा। हम कई सालों तक बीज को अपने कमरे में रखें, अपनी अलमारी में रखेंगे, बीज बढ़ेगा नहीं, उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। तो बोना जरूरी है। हम लोग को आदेश मिल गए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिल गए, भक्तों का संग मिल गया, दीक्षा भी मिल गई, लेकिन अभी कितना उन आदेशों को, उन जो हमें बातें बतलाई गई हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उस पर निर्भर करता है कितना हमने बीज को बोया। और बीज बोना ही बहुत नहीं है, पहला स्टेप तो बीज बोना, पहले बीज को प्राप्त करना। तो तीन प्रक्रियाओं से बीज को प्राप्त किया जाता है, श्रद्धा से, शरणागति से, और आदेशों को प्राप्त करना, इच्छा रखने, उनको इच्छा रखना, उनको पालन करने की। और फिर उस बीज को बोया जाता है उन आदेशों को जीवन में उतारने से। फिर तीसरा स्टेप आता है, जब हम बीज को भी बो दिया, अभी बीज को सींचना है। श्रवण कीर्तन जले करा ये सेचन। फिर ये बीज जो है बड़ा होता है श्रवण कीर्तन का जल को डाल के। तो हमें जिस पर, जैसे अभी हम कर रहे हैं, अभी हम जो भगवत कथा सुन रहे हैं, इस बीज भक्ति लता बीज जो हमने बोया है उस पर पानी डल रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो श्रवण करें भगवान के बारे में, भगवान की कथाओं के बारे में, और फिर उसको दूसरों को दोहराएं, दूसरों को बताएं, हरि नाम का जप करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंटिंग एंड हियरिंग, भगवान का नाम जप करना, भगवान की लीलाओं को बताना दूसरों को, और उससे पहले उसको सुनना, कथा को सुनना। तो इस प्रकार से इन दो चीजों से, श्रवण कीर्तन जले करो ये सेचन, बीज धीरे धीरे बड़ा होता है। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी आय, वीरज ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाय। फिर बतलाते हैं कि जब बीज धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, तो भक्ति लता बीज जो है, इसमें से भक्ति लता जो निकलती है, वो बड़ी होते होते ब्रह्मांड के जो परत हैं, ब्रह्म लोक, उससे बाहर निकलकर ब्रह्मांड की परत को भेद कर जो विरजा नदी है वहां पहुंचती है, और उससे भी आगे जाती है, विरजा से लेकर जो ब्रह्म ज्योति है उसमें प्रवेश करती है, और ब्रह्म ज्योति से होते हुए वैकुंठ धाम पहुंचती है परव्योम। तो ये भक्ति लता बीज बढ़ता रहता है धीरे धीरे। तबे याय तद उपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। उसके बाद वैकुंठ लोक में पहुंचने के बाद बीज और बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन जाके पहुंचता है, और गोलोक वृंदावन में भी जाके बढ़ता रहता है जब तक कि वो कृष्ण चरणे कल्प वृक्षे करे आरोहण, जब तक कि वो जाकर जो कल्प वृक्ष रूपी भगवान के चरण है वहां जाकर स्थित नहीं हो जाता। तो देखिए, इस भौतिक जगत में से हम अभी यहां पर हैं, यहां से वो बीज बढ़ता 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 ब्रह्मलोक को पार करते हुए, विरजा नदी को पार करते हुए, ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए वैकुंठ जगत पहुंचता है, वहां से और बढ़ते 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 कृष्ण लोक पहुंचता है, कृष्ण लोक से बढ़ते बढ़ते भगवान कृष्ण के चरणों तक जाके वहां जाकर वो स्थित होता है। ताहा विस्तारित हाना फल प्रेम फल, यहां माली सेचे नित्य श्रवण आदि जले। और उसके बाद वहां पर जब भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है ये भक्ति लता, फिर उसमें से प्रेम के फल बाहर निकलते हैं। लेकिन यहां पर इहां माली सेचे, और उस पूरे दौरान जब वो भक्ति लता बढ़ रहा है, जब तक कि वो भगवान के चरणों तक पहुंचकर उसमें से फल नहीं प्राप्त होते, इस पूरे दौरान इहां माली सेचे नित्य श्रवण आदि जले। इस पूरे दौरान जीव को क्या करना है, श्रवण कीर्तन का जल को देते रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पूरे तात्पर्य में इस पे जोर देते हैं, श्रवण कीर्तन हमेशा चलते रहना चाहिए। प्रपा जी लिखते हैं, अगर कोई भक्त ये सोचता है कि अभी मैंने कई साल बिता दिए श्रवण कीर्तन करते हुए, अभी तो मैंने भक्ति में बहुत प्रगति कर ली है, अभी थोड़ा श्रवण कीर्तन को कम भी कर दें या बंद भी कर दें तो काम चल जाएगा, प्रपा जी बोले निश्चित ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाएगा। ऐसा प्रपा जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, सर्टनली प्रपा जी बोलते हैं निश्चित है इस बात का कि जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन के जल को रोक देगा तो पौधा बढ़ना कम हो जाए, बढ़ना रुकेगा ही नहीं, मुरझा जाएगा, भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए भक्त को चाहिए, अगर हमें इस अवस्था तक पहुंचना है जिसके बारे में उद्धव बतला रहे हैं या उद्धव दिखा रहे हैं, श्रवण कीर्तन के जल को रेगुलरली देना है। इस पर प्रभुपाद जी बहुत जोर से बोल जोर देते हैं, यहां माली सेचे नित्य नित्य श्रवण आदि जले। जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता, कृष्ण प्रेम के फल नहीं निकलते, तब तक माली को चाहिए कि श्रवण के जल को, कीर्तन के जल को देता रहे देता रहे देता रहे, रोके नहीं इस जल को। फिर प्रभुपाद जी बतलाते हैं क्या कारण है कि हम इस श्रवण आदि श्रवण कीर्तन के जल को डालना कभी कभी रोक देते हैं। हमारे जीवन में हम देखते हैं रोज नहीं देते, नित्य बोला क्या है यहां पर, यानी रोज हमें नित्यम भागवत सेवा इसलिए बताया गया है, रोज श्रवण कीर्तन करना है लेकिन हम कभी कभी नहीं कर पाते। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? कोई सोच सकते कब व्यक्ति का ये जल डालना रुक जाता है या कम हो जाता है या बंद हो जाता है? क्या वो चीज है जिससे हमारा श्रवण कीर्तन का जल डालना सींचना उस पौधे को बंद हो जाता है? हाँ? बिल्कुल सही। आगे बतलाते हैं, यदि वैष्णव अपराधे उठे उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे तार सुखी आई पाता। अगर वैष्णव इस पौधे को सींचते समय श्रवण कीर्तन का जल डालते डालते साथ साथ किसी कोई वैष्णव अपराध कर बैठता, कोई अपराध कर बैठता है तो उसका जल डालना रुक जाएगा। जो भक्ति लता बढ़ रही है वो वहीं रुक जाएगी। तारा सूखी याय पाथा, जिसका पत्ता है जो निकल रहे हैं उस पत्ती लता बीच से, वो सूखने लगेंगे और भक्ति में प्रगति वहीं रुक जाएगी। तो शास्त्र इस पे बहुत जोर देते हैं, प्रभुपाद जी अपने लंबा चौड़ा तात्पर्य देते हैं समझाने के लिए कि भक्तों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए हरिनाम के प्रति अपराध करने से, वैष्णव के प्रति अपराध करने से। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब कई सारे अपराधों के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, नाम अपराध के बारे में, वैष्णव अपराध के बारे में, इन सब अपराधों से भक्त को बचना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि भक्ति लता बढ़ती रहे, इस स्तर पर पहुंचे एक दिन कि हमारा चिंतन भगवान में बिल्कुल बिना हिचक लगे रहे, बिना टूटे लगे रहे, तो वैष्णव अपराध से बचना है। एक तरफ सबसे पहले भक्ति लता बीज को स्वीकार करना है, उस बीज को बोना है, कीर्तन श्रवण के जल से उसको सींचना है, और सींचते समय एक इस चीज का ध्यान रखना है कि वैष्णव के प्रति या हरिनाम के प्रति अपराध ना हो। और आगे वो श्रृंखला चलती है जिसमें लंबा चर्चा है, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट और बतलाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कि एक खतरा और है, एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए माली को अगर वो चाहता है कि उसका भक्ति लता कृष्ण लोक तक कृष्ण चरण तक पहुंचे। वो है, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्य तार लेखा। कि भक्ति बीज के भक्ति लता के साथ साथ कई और पौधे भी उगने लग जाते, उपशाखा कई और चीजें भी उगने लग जाती हैं, जैसे मुक्ति की इच्छा, भुक्ति की इच्छा, और इसके कई सारे अगले श्लोक में अलग अलग चीजें बतलाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि अलग 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 भौतिक इच्छाएं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक इच्छाओं के साथ जब हम हरि नाम का जप करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, तो केवल हमें भौतिक लाभ ही मिलेगा, कृष्ण भक्ति नहीं मिल पाती, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं मिल पाता। इन भौतिक इच्छाओं को हटाना, और भौतिक इच्छाओं के कई सारे रूप होते हैं, इसके बारे में विस्तार से आप चाहिए तो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 19वां अध्याय इसमें पढ़ सकते हैं, अभी समय नहीं इतना चर्चा करने के लिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये। हमको समझना चाहिए कि क्या क्या उपशाखा हमारे भक्ति लता बीज के साथ आ जाती हैं, और जब हम भक्ति लता बीज पे जल डालते हैं उन उन व्हाट यू कॉल वीड्स, घास नहीं, खत, खत पतवार दिया, जो अवांछित जो घास उग रही है, पौधे उगते हैं जो नहीं चाहिए, ऐसे पौधे भी उग जाते हैं। तो भक्ति लता बीज के साथ साथ दूसरे पौधे भी वहां होते हैं, पहले से ही हैं, और उन पे भी पानी डलता रहता है तो वो भी भरने लग जाते हैं साथ साथ। वही श्रवण कीर्तन से, वही श्रवण कीर्तन के जल से भौतिक इच्छाएं भी बढ़ सकती हैं। तो एक भक्त को चाहिए कि वो सतर्क होना चाहिए। इस सतर्कता पर यहां पर जोर दिया गया है कि भक्त को ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति लता बीज के साथ साथ कि मैं और भी चीजों पर जल डाल रहा हूं या नहीं। अगर और भी चीजें हैं उनको उखाड़ना चाहिए, और भी भौतिक इच्छा है उनको धीरे धीरे उखाड़ने का प्रयास करना चाहिए। और अगले श्लोक में बताया गया निषिद्धाचार कूटीनाटी जीव हिंसा न लाभ पूजा प्रतिष्ठादि या तो उपशाखा गण। अलग अलग उपशाखाओं का नाम बताया गया यहाँ पर। निषिद्धाचार बुरा विचार, बुरा आचरण, कूटीनाटी जीव हिंसा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि, इस प्रकार से अनेक अनेक उपशाखाएं जो हमारे जो भक्ति लता के साथ रहती हैं उन पे भी जल जलता रहता है तो भक्ति लता जो है बढ़ नहीं पाती, उसको चोकअप हो जाता है, वहीं पे अटक जाती है, उसको उगने के लिए स्थान नहीं, जगह नहीं मिलती। तो भक्ति लता पे जल तो डालना है श्रवण कीर्तन का, लेकिन जल डालने में इतना मग्न नहीं हो जाना कि ये नहीं देखना कि और उपशाखाएं तो वहां पे नहीं है, और अगर हैं तो उनको बाहर निकालना एक करके। तो एक तरफ गुरु कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना है भक्ति लता बीज के रूप में, उसको हृदय में बोना है, श्रवण कीर्तन के जल से सींचना है, और सींचते समय दो चीजों का ध्यान रखना है, एक अपराध ना कर बैठे, और दूसरा जो अनेक अनेक भौतिक इच्छाएं हैं उनको जल ना डाले, उनको खत्म करें, तब जाके हम इस अवस्था पे पहुंचेंगे जहां जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी विदुर जी के उदाहरण से बतला रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा कंप्लीट रहता है। प्रभुपाद जी बताते हैं हमें किस स्तर पर पहुंचना है, अपने मन को कृष्ण में लगाना है, और कैसे स्तर पर पहुंचा जाए उसके लिए पूरी ये प्रक्रिया समझाते हैं। तो आपको अगर विस्तार से पढ़ना है तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहां रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं देते हैं कैसे इस भक्ति लता बीज को बढ़ाया जाए। प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर तात्पर्य है इसमें, तो उससे हमारा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा, समझावट आएगी कैसे भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करते समय किस प्रकार की बाधाएं आती हैं जिनसे भक्त को बचना चाहिए। और ये सब ध्यान रखते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो जल्दी ही ये भक्ति लता बीज कृष्ण चरण को प्राप्त कर पाएगा, और फिर हम भी इस स्तर पर पहुंच जाएंगे जैसे हम उद्धव दिखला रहे हैं, भगवान का नाम सुनते ही भगवान में मग्न चिंत हमारा ध्यान मग्न हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई एक प्रश्न है, शंका है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा, आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया और मानसिक चिंतन की क्या महत्व है इसको समझाया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मानसिक चिंतन से कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन मानसिक चिंतन का भी एक आगे और परिणाम है जो यहां प्रभुपाद जी ने बताया है कि उन्होंने कहा कि द्वारका से वो इस लोक में आए तो वो मानसिक स्तर नहीं था, वो मानसिक स्तर की एक परिणति होती है, एक फल होता है जो शुद्ध भक्त में सिद्ध देह को प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध भक्त है उसकी एक सिद्ध देह होती है और वो दिव्य होती है, वो मानसिक चिंतन से अलग है, वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है जैसे कि हमारा ये शरीर काम करता है, लेकिन वो दिव्य स्तर पर होता है। तो उसमें जो कहा गया है कि जो शुद्ध भक्त है वो इस भौतिक संसार में भी रहता है और भगवान के यहाँ भी रहता है। तो भगवान के यहाँ वो दिव्य जो सिद्ध देह है उससे रहता है और भौतिक देह से वो यहाँ पर रहता है। तो जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण का चिंतन हुआ तो उनकी वो सिद्ध देह जागृत हो गई और सिद्ध देह से जागृत होकर के वो कृष्ण लोक में पहुंच गए और वहां पर वो निमग्न हो गए। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे जयदेव हैं, वो सिद्ध देह से लीला में विचरण करते थे और उसी को फिर वो अपने गीत में लिखते थे। और वो सिद्ध देह होती है इस बात का और भी बहुत से हमको उदाहरण मिलते हैं। तुमने देखा है कि बहुत से उस सिद्ध देह से भगवान के साथ होली खेल रहे हैं और जब बाद में देखा तो उनके ऊपर इस भौतिक शरीर पर भी रंग मिलता है। एक दफे कल ही मुझे बतलाया गया या एक दिन के कोई वो चढ़ा रहे थे फूल, वो दो उल्टा जो है उनके गले में दे दिया, वो गले में उनका फूल था। तो ये सिद्ध देह को सिद्ध करते हैं। हर जो शुद्ध भक्त है उसकी सिद्ध जागृत हो जाती है, वो मानसिक चिंतन से ऊपर की बात है। यहाँ पर जो उद्धव जी हैं वो सिद्ध देह से जो वहां पर भगवान के लोक में गए और वहां से उतरे हैं, मानसिक स्तर से वापिस नहीं आए बल्कि उतरे हैं सिद्ध देह से हुए। बस यही मुझे कहना था। धन्यवाद।
हरे कृष्णा। नंतरा श्रीमद भागवतम की श्री प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद।
बहुत धन्यवाद। इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला आपने।